तुम्हारे शैंपू कहाँ गए, तुम्हारे रंगीन वस्त्र कहाँ गए, रानी का जो वेश था पहले का वो कहाँ गया? बेटा तुम्हारे पिताजी परलोक सिधारे, तो हम कहाँ हैं? तरह तो बन में गए इसलिए बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने किया। मैंने परवे राजा के दो बार मांगने को कहा था, उन्होंने शिक्षा की थी और यही मैंने भर का राज करती हो और हमको 14 वर्ष के लिए बनता। अरे तू हमारी माँ नहीं मेरी शत्रु हो, मुझे स्वीकार है कि तुम्हारी भोग से मैंने जन्म लिया। आज से तुम्हारे और हमारे बीच में माता पुत्र का कोई संबंध नहीं रहा, मैं सब खत्म किया। और फिर कौशल्या जी के यहाँ करके रोने लगे और उन्होंने घोषणा की कि मैं अभी सब जो हमारे राज्याभिषेक के लिए ये सब चीजें प्रस्तुत है, आराम के लिए पहले थी और मेरे लिए हो रहा, सबको उतार दिया। वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि महर्षि और प्रजाओं को साथ लेकर के चतुरंगनी सेना को लेकर के राम को मनाने के लिए चले गए। चित्रकूट में पहुंचे, राम से मिलन हुआ, महाराज दर्शन तो चले गए थे, रामचंद्र जी को उनके लिए जल अर्पण इत्यादि करना था संसार, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रात में भरती गए कौशल्या मैया के यहाँ, माता जी मैं राम को मनाने के लिए आया हूँ, आप उनकी मैया हैं, आप जो कुछ कहते हैं जरूर मानेंगे, इसलिए आप कहिए कि भरती भर जैसा प्रार्थना कर रहा है संसार में राज्य पर आपका अभिषेक हो और आप लौट चलिए। बार बार आने पर वो रोने लगी और बोली बेटा मैं कैसे कहूँ, वो अपने पिता के आदेश से आया है, मैया के आदेश से आया है, मैं उसे धर्म को छोड़कर के अधर्म करने के लिए कैसे कहूँ, तो क्या मैं अधर्म के पद पर हूँ? नहीं बेटा, तुम भी धर्म के पद पर, धर्म के पद पर, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती है? तो मैं वर्षा नहीं कर सकता, माता पिता के आदेश को झूठे करके लौट चलो, बेटा ये कैसे कहूँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तुम ठीक हो, किंतु ऐसा नहीं है, तुम दोनों हमारे बराबर के पुत्र हो, बल्कि मैं तुम्हें अधिक स्नेह करता। तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि आराम लौट चले? मैं चाहती थी मुख कि मैं बंधन में हूँ। जब उन्होंने नहीं कहा था गुरु वशिष्ठ के पास में गए, गुरु जी मैं जिस कामना के लिए आए हैं आप आशीर्वाद कीजिए जो मैं मेरी कामना पूर्ण हो, राम लौट जाए। आप रामचंद्र हमारे सभी के गुरु हैं, कुछ गुरु हैं बहुत पहले से, आप आदेश देंगे वो जरूर मान जाएंगे। खरी मैं कैसे कहूं, अधर्म पद तो है नहीं, ये राम धर्म की छुरी है और तुम प्रेम के
समुद्र हो,
अथा समुद्र हो, अथा समुद्र हो, हिमालय डूब जाएगा कि तू अत्य मत सीधा साथ नहीं होगा, तो तुम्हारा प्रेम जो है प्रबल है समुद्र की भांति, अथा उसमें राम की मर्यादा डूब तो जाएगी कि तुम फिर भी वो सत्य मत, इसलिए मैं कैसे कहूँ अधर्म कर। बड़े दिन रात को सुनैना जी के पास में गए, सीता जी की मैया जनक जी की पत्नी, उनसे पहुँच गया, अच्छा मैं अपने पति से कहूँ, क्या वो नहीं चाहते कि हमारी सीता राजधानी में आ जाए और पन्वन निर्माण न भटके? उन्होंने कहा जी जो कुछ हमारे गुरु कहेंगे मैं वहां, जिससे सबका कल्याण दूसरे दिन विराट सभा बैठी। ऋषि महर्षि उमा प्रसाद एक तरफ में बैठे, सब ऋषि महर्षि। दूसरी तरफ में माताएं बैठी और अयोध्या के सब विशेष विशेष नागरिक बैठे। और फिर एक तरफ भरत बैठे, एक तरफ में राम बैठे। महाराज सीता जी के पति सीता
जनक
महाराज बैठे, वो सिद्ध ऋषि थे, अपूर्व ज्ञान के भंडार थे। राजा जनक उसको क्या कहते हैं, विदेह कहते हैं, और शरीर रहते में भी शरीर नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं, अथाह ज्ञान है। वशिष्ठ जी ने कहा, आज अयोध्या प्रियों का सौभाग्य है, यह परिवार आज अर्थात सुख समुद्र में डूब रहा है, कोई बात कराने वाला नहीं है, किंतु आज भगवान की इच्छा से यहाँ महाराज जनक पधारे हैं, अथाह ज्ञान संपन्न। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसका पाठ कराएंगे, दोनों को सांत्वना दे, और दोनों के लिए जो अच्छी है बात, जो मानने युक्त हो उसको ये बतलाएं, जयराम को क्या करना है, भक्त को करना क्या है, किस परिस्थिति में वे समाधिस्थ हो गए, और अपने गुरु शंकर जी का स्मरण किया। स्मरण करके बोले, देखो हमने अच्छी तरह से विचार किया है, बतलाओ मेरी बातें भरत तुम मान्य करेगा, मानेगा या नहीं तो बेकार काम क्यों कहें, तो मेरे सब तरह से मैं मानूंगा, जो कुछ आप कहेंगे मैं मानूंगा। राम इस तरफ में बेकार बोला कि तुम मेरे आदेश को पालन करेगा या नहीं, जरूर करें, आप जो कुछ कह देंगे अब इस तरह से एक सेकंड की देरी नहीं होगी मैं करूँ। तो उन्होंने विचार करके कहा, देखो भरत की जीत हुई और राम की हार हुई, भरत की जीत, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भरत की जीत हुआ, मैंने
राम को अयोध्या लौटना पड़ेगा,
लौटना पड़ेगा, इतने बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, देखो भरत का प्रेम अथाह समुद्र के समान है, और राम की मर्यादा जो है
हिमालय के समान,
या धर्म का पालन करना वो हिमालय जैसा पर्वत है, किंतु भक्त का जो प्रेम है ऐसा भारतीय प्रेम, उसमें ये राम की मर्यादा डूब गई, इसलिए भक्त की जीत हो गई। बड़े प्रसन्न हुए सब, और सोचा राम का राज्य तिलक होगा, अयोध्या लौट जाएंगे। उन्होंने कहा, देखो एक बात और विचार करो, प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, प्रेम की मर्यादा क्या मर्यादा होती है, कि प्रेमी को सब प्रकार से सुख देखना, सुखी देखना चाहता है, प्रेमी जिसको वो प्रेम करता है उसको सुख होना चाहिए, ऐसे ही क्रिया करता है। भक्ति का डेफिनेशन हमने जो बताया, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की सेवा हो, उसे कोई कामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना। इसलिए देखो राम कृष्ण प्रसन्न है, ये देखो तुम्हारा इष्ट देव तो राम है, हाँ पूछो उसे कैसे वो सुखी होगा, वो क्या चाहता है वो करो। अब तक तो तुम अपनी तरफ से दूर चले थे, रामचंद्र लौट आने से मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम्हारी खुशी होगी, रामचंद्र को खुश होगी कि नहीं खुशी होगी, ये विचार करो, इसी को आप लोग भी समझें। मैं उनकी सेवा करके खुश होऊंगा, ये भक्ति का विचार है। हमें कष्ट लाभ हो किंतु हमारे प्रभु को सुख पहुंचना है, वो सुखी होनी चाहिए। जाओ राम के चरणों में बैठो और उनसे पूछो कैसे आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा आपको कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूं, आप हमारे गुरु हैं। अब तक हमारे नेत्र बंद थे, आज हमारे आंखों को आपने गुरु की भांति खोल दिया। मैं अब तक केवल अपने सुख की बात कर रहा था, दूसरों के सुख की बात कर रहा था, किंतु राम का सुख तो हमने देखा नहीं। रामचंद्र जी के चरण में बैठ करके बोले, प्रणाम करके, प्रभु ये मेरे गुरु जी ने आज हमारी आंखों को खोल दी, आप किसमें खुशी हैं आप अपना, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या करने से आप खुशी होंगे। राम बोले जब तुम्हारी जीत हो गई है, मेरी हार हो गई है, इसलिए मैं अभी तुरंत अयोध्या का राज सिंहासन में ग्रहण करता हूं। मैं आज से अयोध्या का राजा बना, सब कुछ ठीक है, किंतु हमारे पिताजी का वचन भी झूठा ना हो, मैया का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मैं राजा होते हुए तुमको आदेश दे रहा हूं कि 14 वर्ष तक मेरे राज्य को संभालो। तुम्हारा राज्य नहीं, मेरा
प्रतिनिधि होकर,
मेरा प्रतिनिधि बनो और प्रतिनिधि बन करके राज्य को संभालो। मैं ठीक है, किंतु एक प्रतिज्ञा है, 14 वर्ष के बाद में एक घंटे का, एक सेकंड का विलंब होगा तो ये शरीर नहीं रहेगा। नहीं नहीं रहेगा, मैं जरूर आऊं जाऊंगा, पहले तुम निश्चिंत रहो, ये मेरा राज्य। ये देखो इसको कहते हैं भक्ति, अपने लिए कुछ मत मांगो कृष्ण से, भक्ति तरह भक्तिमान बनो, अपने सुख के लिए गुरु जी को मत देखो, उनके सुख के लिए गुरु जी की सेवा करो, यहीं से आरंभ करो, चैरिटी बिगेन फ्रॉम होम, यहीं से शुरू करो। कैसे गुरु जी को खुश कर सकते, गुरु जी भी वैसे आदर्श कोटि के होने चाहिए, जैसे तैसे नहीं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं, क्या करने से, निकट रहने से सुखी होंगे, न कहीं अमेरिका भेज देंगे या नवदीप धाम में भेज देंगे, कहां भेजने से कैसे वो सुखी होंगे, इस पर तुम देखो विचार करो, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। जसोदा मैया को ब्रजवासियों की भक्ति देखो, जसोदा मैया का देखो, ब्रजवासियों का देखो, हम लोग इस प्रसंग में वर्णन करेंगे उनका चरित्र भी, जो कैसे कृष्ण को अधिक से अधिक प्रसन्न किया जा सकता है, इसमें ब्रजवासियों का हम लेंगे, वैकुंठवासियों का भी विचार करेंगे, लौकिक जो लोग भी जो भक्त हुए हैं उनका विचार करेंगे, और उन सब में अधिक सबसे अधिक कृष्ण की सेवा करने वाली जो गोपियां हैं, और उनमें भी राधा जी जो कभी भी अपने मन में किसी प्रकार की कोई भी अपनी इच्छा नहीं रखने वाली है, उस राधिका के उच्चतम भावों को भी हम लोग इस भक्ति के अंदर देखें। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, कैसे हम भजन कर सकते, राधा कृष्ण को कैसे हम सेवा कर सकते हैं, उनसे कुछ न मांगे, बस मांगे यही आपके चरणों में भक्ति हमारी, ये कामना कामना नहीं। इसके बाद में हम अभी और वक्ता लोग बोलेंगे, फिर अंत में मैं बोलूंगा। गोस्वामी दास जी हैं, तुलसीदास, हमारे सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, फिर पारसियारस को किसी ने स्पर्श नहीं किया, और बंगाल के कभी लोग इतने मधुर रूप में चैतन्य चेता में शिक्षा में गोविंद दास के करते में, और हमारे गोस्वामी
में
कुछ इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम इस संसार को पार करें, किंतु हम कुछ जानते ही नहीं। यहाँ तक कि हमको ये नहीं पता कि वास्तविक रूप में हम कौन हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन है, माया क्या है और भगवान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। इसलिए हमको एक सद्गुरु के चरणों में बैठकर हरिकथा सुनना है। हरिकथा कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हरिकथा एक निर्मल नदी जैसा गुरु के मुख से बह रहा है, हमारे चित्त को साफ करेगी वो हरिकथा की नदी। शास्त्र में एक और उदाहरण भी दिया गया है, जनन मरण आदि संसार आनंद संतोष प्रतिष्ठिर जल रचित हूँ एवं उपार पानी ब्रह्म निष्ठ गुरु उपस्थित तब अनुसर थे कि जैसे जब किसी का बाल में आग लग जाती तो वो फटाफट पानी को पार जाता, उसी ठीक प्रकार से हमको जो इस संसार का दुख से जल जा रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, गुरु के पास फटाफट भागना चाहिए और अपने सब कुछ शरणागत होना चाहिए। इसके संबंध में एक और प्रश्न उठता है कि गुरु कौन है।
निरंतर कश्यप भगवान विष्णु से देश करने लगे, 60,000 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मा जी से अमरत्व वर की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, इस शरीर से कोई अमर नहीं बनता, कोई दूसरा ही मानो। उस समय चाला की चतुराई से अपनी बुद्धिमता के खातिर हिरण्यकश्यपु ने यह माना कि दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं तथा आपके द्वारा रचे हुए कोई भी प्राणी मुझको मार नहीं सके। तो ब्रह्मा जी बोले, अच्छी बात है, चलो तथास्तु हो दिया। उन्होंने सोच लिया, जब हमें कोई प्राणी मार नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र मुझको काट नहीं सकता, दिन और रात में मैं मरूंगा नहीं, तो मैं तो अमर बन ही गया, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं। परंतु हुआ अजितेंद्रिय, जो कि विषय भोग में प्रवृत्त तपस्या से लौटने के बाद अजितेंद्रिय होकर अप्सराओं के साथ में विहार करने, शराब पीने में, देवताओं को पीड़ा पहुंचाने में, प्रजाओं का शोषण करने में और समाज को निर्यातित करने में सिद्ध हस्त बन गए। पशुओं प्राणियों दल को कष्ट दिया करते, तो इस प्रकार के हिरण्यकश्यप जबकि तपस्या से लौटे, उनके पत्नी के गोप में जो बालक था उसी का नाम हुआ प्रह्लाद, जो प्रकृष्ट रूप में अल्लाह आनंद को बढ़ाने वाले, जो कृष्ण भक्ति के स्वरूप। इस प्रकार प्रह्लाद जन्म के साथ साथ जो नारद जी का उपदेश माता के कोख से प्राप्त था, इसी कारण वे भगवान को कभी भूले नहीं, निरंतर प्रभु का स्मरण करने लगे। उन्हीं स्मरण में माता कभी उनको खिलाना पिलाना चाहती है, वे भी भूल जाते, भगवान के स्मरण में डूबे रहते। इस प्रकार के प्रह्लाद जो कि गोविंद बाहु परिरंभित, भगवान गोविंद स्वयं अपने भुजाओं के द्वारा उन्हें आलिंगन किए हुए सदा सर्वदा उनकी रक्षा किया करते हैं, कौन उनको बिगाड़ सकता है। फिर भी जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, पिताजी ने शुक्राचार्य के पुत्र संधामर्क के वहाँ गुरु गृह में दूसरे छात्रों के साथ में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। जबकि गुरुगृह में रह करके प्रहलाद पढ़ रहा था, तो ये तीन परिवार वे राजभवन में आ गए, जहां राज दरबार में हिरण्यकश्यप बैठक किए थे। तो उनने बालक को सामने ली, जैसे देखा तो गोदी में उठा, बड़े लाल प्यार के साथ में बालक से पूछा, प्रहलाद तुमने गुरुगृह में जो कुछ उत्तम विद्या सीखी है, जो तुम्हें अच्छा लगा हो हमें कुछ सुना, जैसे साधारण माँ बाप भी करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, उस समय प्रहलाद का ध्यान ज्ञानवान कहा है हरिवार, इसलिए उन्होंने क्या बताया, तरसाद मंदे सुरवर जबे हिराम, सदा समुद्र बिक नदिया मसर ग्रह, हिद्वात पातम गृहमंद कूपम बनम गतो जत हरिमास्तये। हे पिताजी, हे असुर श्रेष्ठ, हे महाराज, इस संसार में वही बुद्धिमान और जीवन की वही श्रेष्ठता है, जहां इस गृह रूपी अंधकूप को जिसमें आत्मा का विनाश हो जाता है। अब जैसे बालक ने बताया कि मैं कौन हूं, कहां से आया और मुझे कहां जाना है, इस बात का हमें कोई खबर नहीं है, केवल खाने पीने और नाच गान में रंग तमाशा में ही हम डूबे हुए, जो हमारे पीछे कोई भी अनुसंधान नहीं। तो इस प्रकार के गृह रूपी अंधकूप में पड़े हुए भला किसी को शांति है, किसी को भी शांति नहीं। वास्तविक कल्याण का पथ है तो बनाऊंगा तो हरिमास करे, कोई संत पुरुष ऐसे गुरु के चरणों में आश्रय लेकर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, वह यथार्थ शांति को प्राप्त होता है। गृह रूपी अंधकूप में पड़े वह गृह रूपी अंधकूप कैसा, जैसे कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, चलते चलते पीछे से बाघ ने उसको आक्रमण कर दिया, डर के मारे सामने एक कुआं था जिसमें पानी नहीं है और दीवार में झाड़ियां हो गई, उन झाड़ियों से ढका हुआ उस अंधे कुआं में उस समय वह व्यक्ति एकदम कूदता हुआ डाल को पकड़ करके लटक गया। जैसे ही डाल को पकड़ के लटका, इतने में कुएं में एक सांप था, विषैला सांप, हम उठा लिया फॉक्स और तैरने लगा, तो बाघ आकर के एकदम मुंह बड़ा करके पंजा मार रहा है, कैसे भी इसको पकड़ लूं और खा जाऊं, हां हां कर रहा है, ऊपर से बाघ और नीचे से सांप, जिस डाली को पकड़ करके लटक रहा है उस डाली में भी मधुमक्खी की छत्ता लगी थी, जिसमें मक्खी और चारों ओर से काटना शुरू कर दिया, ज्यादा जंतना में छटपटा रहे हैं, और उनमें भी दो चूहा, एक काले रंग के एक सफेद रंग के, जो कि दो चूहे अब डाली को पूरे तरह लग गए कि थोड़ी देर में वह गिर जाएगा और वहीं पर खत्म होगा, परंतु इसके बीच में से नाक के सामने से उस छत्ता से जब शहद चमक रहा है, तब वह व्यक्ति जाला में जंत्रणा में छटपटाता हुआ सोच रहा है, अब तो मर जाऊंगा बचूंगा नहीं, परंतु इस संसार में आया थोड़ा सा मधुपान करके बस आंख मूंद लूं। इस प्रकार का ये संसार, जिस घर संसार में हम पड़े हुए हैं, ये इसी प्रकार का गृह रूपी अंधकूप है, हमारी चोटी पकड़े हुए है, जब महाराज कब पछाड़ मारेगा हमें कोई ठिकाना नहीं, काल रूपी सर्प हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कौन आकर के गोली मारेगा, कौन पीछे से या सामने से चप्पू मार देगा, कुछ भी पता नहीं, चारों ओर से काल के मारे हम डरे हुए हैं, धमका रहे हैं, वही है सांप के समान पर यमराज मृत्यु जो है वो बाघ के समान चोटी पकड़े हुए, इस शरीर रूपी डाल को पकड़ करके हम सोच रहे हैं संसार में हमारे बंधु बांधव इष्ट मित्र आत्मीय सज्जन पुत्र परिवार ये हमें सुख देंगे, पर सुख देता है सुख कितना है तातल सही करते बारी बिंदु समर सुतमित रमणी समाधि। गर्म बालू मुड़मुड़ा ढूंढने के लिए बालू को गर्म किया, उनमें एक बूंद पानी जैसे छिड़काते हैं तो भेपर होकर के बाष्प होकर के उड़ जाता है। ऐसे ही संसार का सुख एक बूंद पानी के जैसे, एक बूंद शहद के जैसे, और चार ओर से आग लगी हुई जाला जंत्रणा में हम छटपटा रहे हैं। जिस शरीर के द्वारा हम सुख का प्रयास कर रहे हैं, सुख तो एक बूंद है और कितना कष्ट है, जाला जंत्रणा है, इस शरीर को भी दो चूहा कुरेद रहे हैं। वो दिन और रात हमारी आयु को प्रति क्षण 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 में काटते जा रहे हैं। कितना दिन हम जीवित रहेंगे, कितना क्षण हम रहेंगे, इसकी कोई भरोसा नहीं। इसलिए हे पिताजी, एकमात्र हरि का आश्रय लेकर उन्हीं का भजन करना जीवन का यही सार है। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यपु को ठहाका मार करके हंसने लग गया। बोले अरे ये क्या हुआ, हमारा बालक विष्णु की बात करता है, विष्णु हमारा शत्रु है, अरे हमारे शत्रु की बात कर रहा है। छोटा सा बालक, इसकी बुद्धि को किसी ने बिगाड़ दिया, जरूर कई गुप्त वेश में आता है और उसके बुद्धि में ऐसे क्रोध चलाती है। उस समय उन्होंने चारों ओर से पहरा दरी लगा दी, कड़ी पहरा के बीच में और कड़ी चेतावनी भी चंडा वर्गों को दी गई कि इस बालक की बुद्धि को कोई न बिगाड़े और बड़ी सावधानी से बालकों की पढ़ाई। ऐसे पढ़ाई चलती रही। कुछ दिनों के बाद में जब बालक फिर से लौट के आया, इतने में हिरण्यकश्यपु ने फिर से बालक को गोदी में लेकर के बड़े लाल प्यार के साथ पूछता है कि प्रहलाद, संसार में सबसे बड़ी उत्तम विद्या जो है, जो तुमने सीखा हो कुछ हमें सुना तो बताओ। उस समय प्रहलाद ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दशम सर्गमापनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति इस संसार में सबसे बड़ी उत्तम विद्या कुल है, जबकि भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनके चरणों की वंदना करना तथा उनकी सेवा करना, उन्हीं से बंधुत्व भाव से जोड़ अपना हृदय सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पण करना, ये नौ प्रकार की भक्ति है। यह भी पहले अपने को समर्पण करते निष्कपट भाव से कोई व्यक्ति ऐसी भक्ति को करता है वही उत्तम विद्या है। इसलिए आदव अर्पिता पश्चात क्रियते, अपना अहंकार अभिमान ये सभी को छोड़ को समर्पण कर दिया, उन्हीं का बल करके उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी विद्या है। इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ विद्या नहीं होती। अब तो प्रहलाद की बात सुन करके हिरण्यकश्यपु के शरीर में मिर्ची का जैसा चिपकाकर हो गया, बड़ी जोर की मानो आग लग गई। अब क्रोध के मारे तम तमाए हुए इस बालक की बुद्धि को बिगाड़ता है, कौन बिगाड़ता है? संडा मृत्यु को बुलाए, ये भी आए बोले आए तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, राजदंड का भय नहीं है, हमारे शासन में शासन की अधीनता में नहीं हो, आज तुम्हें जब लोग पहुंचाए गए हैं। ये बालक क्या बोलता है? ऐसे ही सिखाए तो भी बोले वादा। ये निवेदन यह है कि आप बालक को पूछे, यदि बालक कह दे कि हमने सिखाया तो हमें आप प्राण दंड दे। उस समय बालक से कहा रे बाबा जवाब वो किसने तुम्हें सिखाया, क्या इन दोनों ने सिखाया या और किसने? सतगुरु। तब प्रहलाद कहता है कि पिताजी ये दोनों कहां से सिखाएंगे, ये तो जानते ही नहीं कि भगवान विष्णु कौन हमारे जीवन के आराध्य देवता है, कौन हमारा आश्रय है, इस बात को नहीं जानते। ये लोग भौतिक बात में डूबे हुए हैं, रुपए पैसे धन दौलत भोग और पुत्र परिवार, इससे आगे और कुछ नहीं जानता। नवे विदुर स्वार्थ गतिन ही विष्णु दुराशया जे वही अर्थ मालिक, हृदय मलिन बना हुआ है, बुद्धि भी मलिन है, कहां से सिखाएंगे? भगवान की बात है, भगवान की भक्ति कहां से देंगे? ऐसे बहुत से गुरु अभी अभी इस बालक ने बताया था ना, गुरवो भगवत संति शिष्य विद्या पहाड़ का। इस जम्मू महानगरी में भी बहुत से ऐसे गुरु आते हैं धन बटोरने के लिए, बड़े बड़े सिद्ध गुरु बड़े बड़े महात्मा नामी नामी महात्मा आ रहे हैं, 2-4 लाख 10-20 लाख उठा करके ले गए और बड़ी बड़ी बात है, और दुकान में सारी चीज मिलेगा, कोई निष्ठा नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई शुद्ध भक्ति की बात ही नहीं। इसलिए कहते हैं शिष्यों के यथार्थ संताप को दूर करने वाले व्यक्ति वह दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं दुराशया जिन लोगों का आशय अंतकरण हृदय मलिन है वो कहां से सिखाएंगे? वही रक्त वाणी और बाहरी विषय को बहु आनंद कर रहा है, अंधा जठांत ही रूपनी रवाना स्त्योर स्वतंत्र उर्दान निबद्ध। एक अंधा व्यक्ति ऐसे दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके चलता है, ऐसे ही संसार के मार्ग में कर्म मार्ग में जो बंधे हुए हैं वो कहां से दूसरों को सुख शांति दिला सकता है? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भगवान में चित्त ऐसे नहीं लगता। लोग सोचते हैं संसार में झुलसते हैं परेशान होते हैं, चाहते हैं प्रभु का भजन करें पर होगा कहां से? मतीर न कृष्ण परत सतो हुआ, कितने हजारों व्यक्ति हमारे खोपड़ी में मदद में बैठाने के लिए प्रयास करते हैं, हम भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं पर होता तो नहीं। क्यों? पहले जो हमने घर का खूंटा गाड़ रखा है उस खूंटे से तो हम बंधे हुए हैं, वहां से तो हम निकले नहीं। गृह प्रताड़ा उस घर का खूंटा गाड़ करके उसी के चारों ओर घूम रहे हैं कि एक महल एक मंजिला से 10 मंजिला कैसे हो, उसी के लिए हम दिन रात लगे दिए हैं। हमारा ध्यान मन ज्ञान विषय सुख को बढ़ावा देने के लिए भगवान की ओर तो लग नहीं रहा है, कैसे लगेगा? गृह प्रताड़ा और इंद्रिया भी तो डावाडोल है, अदावर विषताम तमिश्राम, दिन रात गलत बातों को बड़ी खराब चीजों को हम सोच रहे हैं, उन्हीं चिंता चिंता में हम डूबे हुए हैं। और क्या चवाई हुई चीजों को दिन रात वही भोग रहे, रोज दिन का रोज मर्रा चलते में और खाना पीना भोग मिला, इससे अधिक आगे तो और कुछ नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान में हमारी बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता, भजन नहीं हो पाता, तो कैसे होगा? इसलिए कहा निश्चित जगाना न प्रणीत जाव, कोई महान पुरुष के चरणों में अपने को जब तक अभिषेक नहीं करता समर्पित नहीं करता तब तक कदापि संभव नहीं भगवान में चित्त नहीं लगेगा, बुद्धि नहीं स्थिर हो डावाडो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हर पुरुनंदर हे अर्जुन व्यवसायत्मिका नित्यात्मिका बुद्धि स्थिर होती है जब कोई व्यक्ति गुरु पाद पद्मों में आश्रय लेता है उनके वाणी को ग्रहण करता है अपने जीवन को उसी तरह से ढाल लिया बना लिया ऐसे व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है अन्यथा डावाडोल। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ऐसे महान पुरुषों की कृपा हो तभी भगवान में चित्त लगेगा। कहां से लगेगा ये लोगों से ये संभव नहीं। अब हिरण्यकश्यपु क्या होता है हिरण्यकश्यपु कहता है अरे हमारे दैत्य वंश रूपी चंद्र वंश को उजाड़ने के लिए कुड़ाली आ गया भगवान विष्णु इसी के माध्यम से इसी के द्वारा ही इस दैत्य वंश को उजाड़ना चाहता है इसलिए कांटे को हटाना विशेष जरूरी है। हे दैत्य वो दानवो आप तुम लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के भिड़ जाओ इस बालक को अभी मार डालो ले जाओ। अब राजा क्या हुई उस बालक को मारने के लिए सभी लोग जरूर जरूर अस्त्र का बौछार किया जिस दिन ने जो जो अस्त्र फेंका उन्हीं को जाकर के वही अस्त्र चोट करता तो उससे चोट खाता हुआ डर के मारे सब मारे मारे भागने लगा। हिरण्यकश्यपु के आंखें तो और बड़ी बड़ी हो गई अरे ये क्या हुआ छोटा सा बालक और सभी लोग डर मारे भाग रहा है इसको कोई बिगाड़ नहीं सका ले जाओ इसे पहाड़ के ऊंची पहाड़ी से गिराओ। कोई ऊंचे पहाड़ी से गिराता है तो उस समय क्या होता है जब ऊपर से गिरा दिया भगवान ने अपनी लंबी भुजाएं बढ़ा दी जो कि गोविंद बाहु परिरंभित भगवान ने तो हाथ बढ़ा दी उनको पकड़ लिया। वे तो समझ नहीं पा रहे परंतु ऐसे लग रहा है कि कहीं रुई की गति में आकर के बैठ गए उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा इसी तरह से आग में फेंकवा दी तो आग बुझ गई गले में पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिया तो पत्थर भी पानी में तैरने लगा और पत्थर के ऊपर जाकर के बैठ गए बाघ के सामने शेर के सामने छोड़ दी सांप के सामने छोड़ दिया सभी हिंसा भाव भूल गए उसको अपने बच्चे की तरह लार प्यार करने ये सब देख देख करके प्रहलाद तो ये हिरण्यकश्यपु तो हार गया थक गया कि एक बालक को मैं बिगाड़ नहीं सका मार नहीं सका ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उस समय जब किसी तरह से उनको बिगाड़ नहीं सके हारे हुए थके हुए सोच विचार में पड़े हुए ऐसे समय में हिरण्यकश्यपु अब क्या करते संडावंत दोनों आकर के महाराज से कहा महाराज जो कुछ हो गया ये बालक हटी है इसलिए ये छोड़ नहीं रहा है अब आप ऐसा करें हमें दे दें इसको राजनीति सिखाएंगे साम दाम दंड भी इस प्रकार से सिखला करके इसकी बुद्धि को हम लोग विष्णु से हटा देंगे जबकि ये राजनीति के सोच विचार में फंस जाएंगे तब वो भगवान को भूल जाएंगे। इतना कह करके अब संडावर का दोनों प्रहलाद को ले जाते हैं तो इस प्रकार फिर से प्रहलाद पढ़ते हैं परंतु उनके मन में अच्छा नहीं लगता है वे अब क्या करते हैं एक दिन संडावर के कहीं बाहर निकल गए गुरुगृह में छोटे छोटे सभी बच्चे प्रहलाद के हाथ पकड़ करके खींचा बोले भाई चलो हम लोग खेलने चल। तो प्रहलाद ने कहा भैया भाई आप लोग बैठ जाओ आपको हम कुछ बातें सुनाते हैं इसके बाद में हम लोग खेलेंगे। तो उस समय बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाते हैं और भी बहुत सारे बोलेंगे इसलिए मैं उन्हीं की अपेक्षा में मैं अपना वक्तव्य यहीं पर रखता हूँ।